डॉक्टर सेल्वमूर्ति जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर ललित कुमार जो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं, उनसे भी आवेदन है कि वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर ललित कुमार, Dr. Lalit Kumar is in this gathering. I request him to take his seat on the stage. We'll begin with a few minutes of silence. से निवेदन करती हूँ हमारे मंचा सिंह आदरणीय स्पीकर्स का फूलों और बैजेस से स्वागत करें। दुनिया में हम समस्याओं से लड़ने के लिए कई पावर्स को यूज करते हैं। बहुत सारा ज्ञान बुद्धि बल आज हमारे पास है, लेकिन फिर भी जो पाया गया है, जो मैग्नीट्यूड है ह्यूमन सफरिंग का, उसको कम करने के इतने प्रयास हो रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं जो वैश्विक लेवल पे हैं। रिस्पेक्टेड ब्रदर सेल्वमूर्ति जी एंड आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड राजयोगिनी सिस्टर अंबिका दीदी, सिस्टर भारती फ्रॉम कल्याण महाराष्ट्र, we all are aware of the famous quote by Albert Einstein, who said that we cannot solve a problem at the level of the thinking that we had when the problems were created. उसी mindset से हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जिस mindset में समस्याएं उत्पन्न होती हैं. तो अब तक जो आपने sessions attend किए उसमें भी attitudes का, beliefs का, thoughts का और हमारी जो consciousness है उसका क्या रोल है अलग अलग जो हमारे आसपास परिस्थितियां हैं उसको फेस करने की, वो सब हमने सुना है. और आज इस विषय पर और गहराई से हम अपने अनुभवी वक्ताओं से सुनेंगे. सबसे पहले आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी, जो पिछले 43 ईयर्स से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और बैंगलोर में सब जोन में करीब 300 सेंटर्स का संचालन करती हैं. आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं और आपके व्यक्तित्व में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत सुंदर बैलेंस हमने देखा है. शी इज अवेयर ऑफ बोथ द फील्ड्स एंड शी इज अ वेरी कीन प्रैक्टिशनर ऑफ दिस मेडिटेशन एंड शी हरसेल्फ has lived a life where she believes that all challenges can be faced through spiritual maturity. And to attain that maturity, we need both clarity of knowledge and we need that power of spirituality through practice of meditation. So she is an ardent student of spirituality as well as a teacher. So today she will give her address on this topic and explore this topic in depth and provide us some key insights on spiritual solutions. I invite Didi Ambika ji.
Om Shanti. हमारे आदरणीय ब्राता सेल्वमूर्ति जी एंड आदरणीय ब्राता ललित कुमार जी और मेरे सब आदरणीय भाई बहनों को नमन है. आज जो टॉपिक है वो हम सबको प्रिय बातें है या कड़वा लगता है? चैलेंजेस कहते ही कड़वा लगता है, अच्छा लगता है? इस तरफ से भी बाल आएगा तो उस तरफ से भी बाल आना है, ठीक है? लाइफ इज अ गेम वेयर वी हैव टू प्ले इट. द चैलेंजेस आर अवर बॉल्स वेयर वी हैव टू प्ले इट, नॉट टू बी अफ्रेड. जीवन में जो भी चुनौतियां आती है तो उसको खेलना है या डरना है? क्या समझते है? चुनौती आना अच्छा है या बुरा है, आपका जवाब चाहिए. अच्छा है? रियली जो अच्छा है समझते हाथ उठाइए. यस, थैंक यू. जो कहते हैं नहीं आना चाहिए, बहुत मुश्किल है भाई, आप आगे आ जाइए, ये प्लीज इधर आ जाइए, मैं आपको देखूं. और कौन कहा अच्छा नहीं है आना? तो ये जो जीवन है ये आनंद भरा, शांति भरा, सुख भरा जीवन है. और ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूबल. वो वैल्यूबल जीवन को ऐसे दुख की घड़ियों से हमें बीतने नहीं देना चाहिए. तो इस जीवन को इतना खुशी से, आनंद से जीना चाहिए, भले कोई भी चुनौती आगे आए. वट एवर मे बी द चैलेंजेस, विच एवर मे बी द लेवल ऑफ चैलेंजेस, बट यू टेक इट इन दैट स्पिरिट वेयर द फिजिकली हेल्दी मैन टेक्स अ चैलेंज टू डू एनीथिंग एंड कैन लिफ्ट एनीथिंग बिकॉज ही फील्स दैट आई एम हेल्थी, आई कैन डू एनीथिंग. So facing challenges, I don't think so. Facing challenges, हमारा बाबा कहते हैं, बाबा means God, the Father. कहते हैं बच्चे जो भी चुनौतियां आती है ये आपको एक तोहफा है, तोहफा तोहफे के रूप में लो, लेकिन तोहफे को तूफान नहीं समझो। तो चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं समझिए, ये खेल समझिए। और जीवन में जो भी चुनौतियां आती है तो आने के पीछे बहुत अच्छी बात है, चुनौतियां आना अच्छी बात है, क्योंकि चुनौतियां हमें कुछ सिखाती है, कुछ अनुभव कराती है। क्यों चुनौतियां अच्छा है, वो कुछ भरती है हमारे में जो गैप्स हैं, मे बी ऑफ वैल्यूज और द पावर्स, या कुछ भरने के बाद कुछ जो भी कमियां है उसमें बदलाव लाती है। इट मेक्स मी टू लर्न ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ। इसलिए चुनौती आना बहुत अच्छी बात है। और मोर द चुनौती चैलेंजेस, मोर वी आर पावरफुल, मोर वी आर एक्सपीरियंस्ड, मोर वी आर विथ वैल्यूज, मोर वी आर विथ सर्टन पावर्स। शत्रु ही ना हो, सोल्जर कहे मैं तो महावीर हूं, ये तो अच्छा नहीं। तो जब आए शत्रु तो फिर वो दिखाए, तो फिर जीते तब हम कहे और रियली इज ए करेक्ट गुड सोल्जर। तो ऐसे हमारे जीवन में ये स्पिरिट होना चाहिए। बट दैट स्पिरिट कम्स व्हेन वी आर फुल ऑफ ऑल द मेंटल एनर्जी, द पावर्स, द स्पिरिचुअल पावर्स, द वैल्यूज विद इन। और वो हमारी नेचुरल फेनोमेना कैसे है हम आगे समझेंगे। बिकॉज बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू रियलाइज वेरी क्लियरली दैट वी आर ऑल जस्ट नॉट ह्यूमन बींग्स विद अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बींग्स विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस। वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन डूइंग्स, but we are being the light being within. This is the first point to realize. I request for some seconds, shift your consciousness to the forehead. Feel that you are a light energy, the source of energy, the light within, radiating light and might. Full stop. Full stop for thoughts for a second. So the challenges, more than me, you all know that the challenges of life, the personal challenges, family challenges, the children, the natural calamities by nature and in the social problems, these are the problems what we really see. And the current challenges, personal, family, professional, financial, social and environmental, these are the challenges where daily we have to face one or the other one. Where while facing, whether we accommodate or to face or to tolerate or to forget or to forgive. These are the things, some of the things where we have to really change our stage, you know, like switching on or off inside. जिसको हम कहते हैं स्मृति का स्विच ऑन एंड ऑफ। जहां ऑन करना है करना है, जहां ऑफ करना है वह करना है, टू फेस दीज चैलेंजेस। इसमें लाइक कईयों को लगता है जीवन जो है ना, हम चल रहे हैं चला रहे हैं, लेकिन आगे हम चल नहीं पाएंगे, ये हमारे से हो नहीं सकता है। कईयों की ये चैलेंज है, कईयों के रिलेशनशिप में बहुत सारी उतराव चढ़ाव है, यू नो, फैमिली रिलेशनशिप्स और इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स और इन द वर्क प्लेस, वेर एवर और विद द कोलीग्स, The relationship is a big challenge now in the present day of life. Is it not? कई है जो आपके कहने पे चलते, कई है जो नहीं चलते. उनके स्वभाव संस्कार, उनकी रीत नीति या उनके ईगो, वो सारी बातें जो बाधर करता है, जिस कारण हम समझते हैं हम नहीं चल पाएंगे. फिर वो कई सोचते हैं ये सेम रूटीन है, जीवन बहुत बोरिंग है. बहुत सारे लोग ऐसे फील करते हैं, क्या जीना है, इसके बदले हमको जाना चाहिए. तो फिर जॉब है, सारा यूथ की ये मेजॉरिटी प्रॉब्लम है, अनसर्टिनिटी इन देयर जॉब्स, अनसर्टिनिटी इन देयर बिजनेस, अनसर्टिनिटी इन देयर फैमिलीज एंड सो मेनी फाइनेंशियल मैटर्स. वेयर व्हाट टुमारो, व्हाट नेक्स्ट, दिस बॉदर्स देम सो मच. अंदर इतना उनको चिंता होती है, जो वो चिंता में ही जैसे कि अपना खुशी भूल जाते हैं. तो फाइनेंशियल क्राइसिस, यू नो मोर, वेर कई लोग सुसाइड करने का शरण ले लेते हैं. कई बातें करके फिर अपना जीवन में कई, यू नो, दे कम इन सच ए क्रिमिनल सर्कल बिकॉज ऑफ द यू नो फाइनेंशियल मैटर्स, वेर दे कैन नॉट कम आउट. आई हैव about 10-15 examples within this month where they were caught in such a way with the financial, because of the crisis, the way they get connected and caught in the other's background where they couldn't come out and they were suffering so much. But why, then we shall discuss. And the health issues and emotions, when we don't like things, that happens again and again, you know. Emotionally we give up, this cannot. But emotionally giving up is very bad thing, which has a very bad effect not only on the body but it is on the mind. We have to be very cautious about it. And parenting, stress at workplace, these are the things where we have to face. But you know, the common reason for all these things, what you feel? Why all these challenges? One or the other daily in front of us, but why? Can you say something? The reason for it? Wealth? Wealth is a reason for it? Well. Unhealthy competition at workplace, lack of meditation. Oh. Not understanding the other person. Karmic account. Yeah, we react to the situations. Then the reason behind all these reasons. Past and future, we don't know. Greed is the main thing. Maya. Can you just saying Maya? Can you give up? Expectations. So let us see what is the main thing culprit. The hard monsters, you know, the ego. Because of ego. Then jealousy, the competition, criticism, comparison at workplace, and because of jealousy, what all things are happening. And shall I tell one thing here? You know, because of jealous, the main boss thought that if we leave him to go ahead, maybe I'll be you know, removed. In that way, the things happened in such a way, whatever he did the work, it was snatched and he was thrown out. So that is the situation of the jealousy in front of so many people, where they are in chaos and in sorrow also. Such type of situations, challenges, how you are going to take, you have to think. And in life, because of ego, comparison with others, people feel so low inside, and you know, they can't be happy. they can't be peaceful, so many things here, and jealousy. Baba kehte hain jo krodh hai mukho wo it makes red face, but jo jealous hai na wo kala atma ko kala kar deti. क्रोध जो है पानी में मटके में पानी है तो वो सुखा देगा, लेकिन जलस जो है वो खत्म ही कर देगा. इतनी खराब है जलस, बिकॉज जलस वाला आदमी वो शांति से ना बैठ पाएगा ना सो पाएगा. जलस इज सच ए बैड थिंग. सो वी हैव टू रियली यू नो यू एरेडिकेट और erase that in such a way with, you know, generous, being a generous, being always a giver, data. Now that multiplies all your skills, all your powers, and you will be always ahead. As much you make others go ahead, you are ahead than them. Baba humko siklate hai, pehle aap karo. Sanghatan mein jab aate hai, जितना पहले आप करेंगे, जितना पहले आप सबको देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप आगे रहेंगे. सी, किसी को झुकाना है तो क्या करने का है? हे, तुम झुक करके हमको नमस्कार करो, बोलने की दरकार नहीं. हम खुद झुके तो क्या करेंगे? वो झुकेंगे. हमारी दादी प्रकाशमणि जी का ये मंत्र था कि संबंधों में अगर अभिमान से, अपमान से, जलसी से, सारी जो भी अप एंड डाउन से उससे बचना है तो हर बात में हार मान लो. हार मान ली तो हार्मनी हो जाएगा, हार मान ली तो आप माननीय बन जाएंगे. यू नो ऑलवेज हमारी दादी सदैव सदैव ऐसे इतने हम्बल. जो उनके जीवन में बहुत नजदीक से हमने देखा तो ईगो का स्वप्न में भी ट्रेस नहीं था. इतने हम्बल वीर, शी अरेज्ड द ट्रेस ऑफ ईगो. तो मैं ये प्रॉब्लम चैलेंजेस के साथ सोल्यूशन बोलती जाऊं ना, लास्ट में ना लो एज ए स्पिरिचुअल सोल्यूशन, ताकि आपको उसी घड़ी वो मिलता जाएगा तो फिर फाइनली वील कम टू द प्रैक्टिस. तो ये जो मेन बात है सारी जीवन में, तो कॉन्शियस में जो रॉन्ग ईगो आ गया, आई एम समथिंग, आई एम बॉडी, बॉडीली वट एवर, आई एम डॉक्टर और इंजीनियर और वट एवर, द वेल्दी पर्सन, दिस 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 दिस, यू नो those things are not me. Me and my role is different. I am not the role. This has to be realized. If you conquer, if you want to conquer the main monster and the problems of it, and this main monster is a big load on my mind. Can you see this? This each second we are with a load of I and mine, I and mine. Is it right? We think that I am this, they are not hearing me. The parents came to me saying that, crying and saying, Didi, ye mere jo bacche hai na, mere baat maante nahi. Sadai main dukhi hota hu, main itna palna diya, main itna sara kiya, main itna sara diya, main. Ye rote rehte hai. To main ko lekar ke, mere ko lekar ke ye jo bojh sir par hai, wo, that is a big challenge of human life, which has really made the life more miserable, I can say. People are more panic inside because of this I and mine. And here the spirituality, Baba, within a second, he says, Bachche, ye aap nahi ho. Ye jo mera samajhte ho, ye aap na, wo hai shareer, ना जो मेरा मेरा जो समझते हैं ना, मेरा घर, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संपत्ति, मेरा पोजीशन, मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट दैट. दैट इज योर रोल टू प्ले. डोंट पुट ए मास्क ऑफ योर रोल, अदरवाइज होल लाइफ यू विल बी क्राइंग. यू बी डिटैच्ड ऑब्जर्वर. Me and my role is different. This is the solution for this challenge permanently. If you want to come out of this main monster, which again and again, again and again, in different ways, in relationship, in the organization, with the professional field, with your colleagues, whatever. This is the main thing for all the problems where we have to be very cautious. This is a story where the video is not there. I will just where the truth, the ego, the animals will come and they were. I want to go first. They are on the bridge. Both will fight. The other two will come. They will, with that anger, they will just throw. We are so powerful. Those two small creatures, they go and cut the rope. And they cut only one side rope. This will be like this. These two will go down. And those two will come and they will think that now who will go first, because this is so small. And they are so clever. They say, I will just bend. You fly on me. And after that I will go in my route. This is an adjustment. Leaving the ego. We are both are, cooperators. We coordinate with each other. जो भी परिस्थिति आती है, हम एक दो को सहयोग दे, एक दो की कमियां कमजोरियां ना देखे, एक दो के रास्ते को सुलझाने में, सहयोग देने में हम मदद करें. दिस इज द मेन थिंग फॉर दिस. एंड अनदर बिग चैलेंज इज द इनसाइड, द सटल चैलेंज. वन इज एन आउटसाइड चैलेंजेस एंड अनदर इज इनसाइड, वॉट एवर द weaknesses we have, which comes in different forms. The Mr. Doubt and misunderstanding. Usually everywhere we see all these things, and because of this doubt and misunderstanding, we feel that anybody speaking, कोई भी बात करता है ना, हम समझते हैं वो शायद मेरे लिए बात कर रहे होंगे. ये मेरे लिए, मैं इसलिए ये बोला था, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं. या घर में हो, सोचते हैं मैंने इसलिए ये बोला था तो यही करते हैं. तो डाउट जो है, अनुमान सदैव बहुत बड़ा कल्प्रिट है. जहां अनुमान है वहां शांति नहीं हो सकती है. जहां अनुमान है अपमान की भी फीलिंग आती है. अनुमान के पीछे अभिमान है, जिस कारण हम अपने स्वमान, सेल्फ एस्टीम, दैट सेल्फ रेस्पेक्ट में हम नहीं रह सकते हैं. और डाउट के कारण हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आ जाते हैं. और दूसरी बात, यहाँ बड़े से बड़े चैलेंज लाइफ में, संबंधों में आते हैं, या कोई भी कार्य क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के बड़े होकर के भी करते हैं. एक्सपेक्टेशन दिन प्रतिदिन अपना बड़ा रूप लेता जाता है. आप क्या समझते हैं? तो आपने कहा एक्सपेक्टेशन इज द बिग चैलेंज हियर. तो सैलरी के ऊपर एक्सपेक्टेड है, तो अगर मिलता नहीं तो दुखी होते. या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं मानते तो दुखी होते. एक्सपेक्टेशन ऐसा है जैसे कि मैं अपनी जीवन की चाबी उसके हाथ में दे दी. वो अप्रिशिएट करेगा तो मैं खुश हूं. तो सोचेंगे हमने इतना तकलीफ लेके सब कुछ बनाया, ये मुझे एटलीस्ट अच्छा है ये भी नहीं बोला. या मैं इतना दिन रात किया, मेरे बॉस ने इतना सारा सहयोग, इतना उनका सारा कार्य करने के बाद भी हमको थोड़ा भी अप्रिसिएशन नहीं मिली, या हमको प्रमोशन नहीं मिली, कुछ नहीं दिया. ये जो एक्सपेक्टेशंस है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में जो आती है एक्सपेक्टेशंस, जीवन में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। और कई मैंने जो बहुत नजदीक से देखा है, एक्सपेक्टेशन इतनी खराब चीज है, नींद को उड़ा देती है, उतना ही नहीं डिप्रेशन में आ जाती है। इतना हम करते हैं लेकिन कोई फल नहीं मिलता है, इसका रिटर्न नहीं मिलता है। सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं, इस एक्सपेक्टेशन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, जिम्मेदारियों के प्रति वफादार है तो मिल जाएगा। और अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर होता हो नहीं सकता है, दूसरों का आधार लेना हो तो क्या करना है? यस, माना हम जो करना है करके छोड़ देना है, तो फिर नो एक्सपेक्टेशन। ऐसे जैसे गीता में भाई जी कह रहे हैं, गीता में कहा जो कुछ भी करना है करके फल मेरे ऊपर छोड़ दो। तो जो करना है गलत भी कर ले वे और फल भगवान को छोड़े, आप क्या कहते हो? यस, डू द बेस्ट देन इट इज राइट। जो भी अच्छे जो कुछ भी करना है कर्म या संबंधों में भी अच्छा जो देना है तब सबको, हम सिर्फ देते जाए देने का ही सोचे, हम उनसे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करें। क्योंकि स्वमान की बात है, हु एम आई, हुम आई बिलोंग टू। द सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में जब हम आप आ जाएंगे, तो आप सभी कोर्स सुन रहे हैं इसलिए मैं बीच बीच में ये बातें आपको सोल्यूशन के रूप में आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आएगा ये जो एक्सपेक्टेशन है ना। आप बहुत बड़े हो, आपको कोई आप आते हैं केयरी नहीं करते हैं, तो अंदर थोड़ी भी आपका खुशी और शांति न जाए, यहां तक आपका स्थिति हो, तब समझो कि आई एम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो या आप बहुत स्किल्ड है, जो स्किल्ड नहीं है उनको मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता, देन तब क्या करेंगे आप? दिस इज अ बिग चैलेंज। और आप सीनियर है स्किल्ड बट जूनियर को मिलता, देन व्हाट, कैसे करेंगे? चुप हो गए आप सब? हाउ यू विल फेस दिस? एक्सेप्टेंस में मन मानता नहीं है तो आप समझेंगे ठीक है चलो उनको दे दिया छोड़ दो, लेकिन मन कहेगा नहीं नहीं इन्होंने ठीक नहीं किया, ये तो मेरे पर सरासर अन्याय किया इन्होंने। क्योंकि बुद्धि बोलती है, निर्णय देती है। तो एक्सपेक्टेशंस, भगवान कहता है बच्चे, हाँ राइट, यहाँ दो तीन चीजों की एक गहरी रियलाइजेशन की जरूरत है। जहां आपको आप सब कुछ होते हुए बट स्टिल यू आर नेग्लेक्टेड, तब भी हमें एक स्वयं के स्थिति पर और कर्म फिलॉसफी पर बहुत गहराई से उसको समझ के उस ताकत से उस सिचुएशन को फेस करना है, उस ताकत से। क्योंकि समय के पहले कर्म से ज्यादा किसको कभी कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप धीरे धीरे समझेंगे इस बात को स्पिरिचुअलिटी के आधार से, हाउ द होल थिंग इज गोइंग ऑन एंड वी आर इन ए लूप बट वी कैन कम आउट ऑफ इट। तो ये जो बातें हैं, तो एक्सपेक्टेशन से और जितना आपके दिल में, मन में, माना आपकी सोच में वो जो पॉजिटिविटी है, हरेक के प्रति शुभ भावना है, उसके आधार से आप नेचुरली यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी। अगर दिल ऑनेस्ट है, एनी चैलेंज यू आर ट्रूथफुल, यू आर विद ऑल द पॉजिटिविटी विद वैल्यूज, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड देन एनीबॉडी एल्स। दिस इज व्हाट आई हैव सीन वेरी क्लोजली with meditators, whatever may be the challenges in such situation, they come out, they are called and they are given. So yeah, this is the power of positivity and the power of the meditation, where ek to pehli baat expectation hi nahi karna hai, jo milna hai mujhe अच्छा ही मिलेगा, जो होगा अच्छा ही होगा, अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होगा भी अच्छा ही है। दिस पावरफुल पॉजिटिव थॉट इन योर माइंड, हमारी बहने मेरे पहले लिप्टन ब्रूस की जो आपको शायद वीडियो दिखाया है उसमें जो वाइब्रेशंस की बात कहा है, तो थियरी ऑफ वाइब्रेशन फॉर एक्शन वन फॉर वन, बट फॉर द वाइब्रेशन whatever the thought we create, the vibration which comes out goes and reaches the corner of a world and comes out with a double effect. Isme hame jo bhi hum sochte hain, soch samajh karke dobara soch ke hame kaary karna hai. Jo bhi hamari soch hai uske andar shuddhata ho, good intention ho, and हरेक की भला के लिए सोचे। और जो कोई आगे जाता है एक्सपेक्ट आप नहीं करो, उसमें खुश रहो, तो यू आर अहेड टुडे और टुमारो, दिस इज पक्का फाइनल। एडजस्टिंग सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हैप्पीली, दैट इज मोल्डिंग माय स्टेज accordingly, understanding the karma philosophy without thinking is to come out of the expectation and always be generous. मैं यहाँ हमारी practical बातें बाबा और हमारी दादियों की बात हम आपके आगे रखना चाहते हैं। हमारी दादियां बड़े तपस्वी है, जो हम बहुत नजदीक से उनको, उनके जीवन को देखा है हमने, उनकी तपस्या, उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो यू नो ज्ञान की गहराई, उनमें कोई कंपैटिबल कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन उनकी जो खूबी है, ब्रह्मा बाबा से लेकर, दादियों से लेकर अब तक भी जो मैंने देखा है, वो हर एक हम बच्चों को इतना हर छोटी बातें, छोटी छोटी बातें सिखा करके वो कहते और आगे जाओ, मेरे से भी आगे जाओ, और करो, यू नो। तो ये जो दूसरों को आगे बढ़ाने में, देने में, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कभी हम सीखते हैं, कभी थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा देरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दे डोंट एक्सपेक्ट, स्टिल दे से कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो बहुत अच्छा करेंगे, करो जाओ। You know, the expectation can be totally deleted by the generous heart in making others to go ahead and being a support of their of others, you know, that is the biggest energy of yours to come out of these expectations. And this is a big challenge of life, and you will be so happy. Isme sukh milta hai. जितना दूसरों को आगे बढ़ाओ, राइट वे आगे बढ़ाओ, राइट वे उनको गाइड करो, उसमें बड़ी ताकत है। तो इस चैलेंज, आजकल क्या है, एक्सपेक्टेशन छोटा बड़ा 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 होते होते बहुत बड़ा हो गया है मॉन्स्टर के रूप में, तो ये बड़ी बात है। तो नेक्स्ट चैलेंज इज बीइंग ऑलवेज ए जजमेंटल दूसरों को। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बात सोसाइटी में भी हम कहते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ऐसा ठीक करता तो अच्छा था, ये ऐसा करना है, वी गिव जजमेंट्स। हमारे बच्चों को भी अगर आगे पीछे करते हैं, तीन बच्चे हैं तो कहेंगे तुम ठीक नहीं, वो देखो अच्छा है, वो ठीक नहीं, ये अच्छा है, ऐसे बोल बोल करके उसका जो मुझे प्यार करना है इन रिटर्न उसकी प्यार जो मुझे मिलना है वो खत्म हो जाती है। जजमेंटल जब होते हैं आपसी प्यार कम होता है। आप क्या समझते हैं? फैमिली में आप देख रहे हो ना, जजमेंटल करते करते बच्चे क्या होते हैं, या तो इंफीरियर हो जाते हैं या तो बहुत सुपीरियर होकर के आपको भी दबाने शुरू कर देते हैं। दिस इज द रिजल्ट, इज इट राइट? तो इसको हैंडल कैसे करेंगे आप? जजमेंट करना है नहीं है? वो गलत कर रहा है, यू वॉन्ट टू बी जजमेंटल आर लीव, अयो छोड़ो, क्या करेंगे? आपकी बच्चे है ना, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यू वॉन्ट टू बी जजमेंटल आर जस्ट कीप क्वाइट? और नॉन जजमेंटल रहना ठीक है या नहीं ठीक है? ठीक नहीं है ना, तो क्या करना है? सरेंडर सभी सिचुएशन में नहीं कर, वो तो और घोटाला कर देंगे। तो क्या करेंगे? एज एन ऑर्गेनाइजेशन चीफ आप कहिए टू बी जजमेंटल और नॉन जजमेंटल, एज ए फैमिली बहने कहे बच्चों के प्रति जजमेंटल रहे या ना रहे, गलत अगर करता है तो क्या करना है? हाँ, तो यहाँ जजमेंटल भी रहना है। जजमेंटल अंदर जज करने के बाद आप जो जज किया है इम्प्लीमेंट करने टाइम इतना प्रभावशाली आपका संबंध हो, संपर्क हो, उनको मालूम ही नहीं पड़े कि हमने ये बात समझ करके आपको जो रिजल्ट में देना है दे रहे हैं। बच्चे भी, बच्चों को ये ना कहो तुम गलत है, तुम गलत है, तुम ठीक नहीं है, तुम्हारा बुद्धि ठीक नहीं है, दैट गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द माइंड, यंग माइंड्स स्पेशली, इसमें करना नहीं है। जजमेंट गलत करते हैं तो उसको सुधारने के लिए युक्तियां करना चाहिए। बच्चों को जो भी परिवर्तन करना है बहुत प्यार प्रेम से, लव एंड लॉ के आधार से हमें ठीक करना है। तो हमारे बाबा क्या करते थे, जो भी हम बच्चों को सुधारने के लिए, भगवान का प्लान क्या है? भगवान हम बच्चों को इतने सम्मान में, सेल्फ रेस्पेक्ट में खड़ा करता है और खड़ा करके कहता है बच्चे तुम इतने ऊंचे, इतने बड़े, इतना रिस्पॉन्सिबल, ये करना ठीक लगता है आपको? यू विल लीव द जजमेंट ऑन अस एंड से ये बच्चे ठीक है, हमको कहना है हाँ ठीक नहीं है, दिस इज राइट और नॉट? तो आपकी जो भी बच्चे हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी आपके बच्चे हैं, तो सिचुएशन ऐसे क्रिएट करना है, यू हैव टू मेक हिम टू जज रियलाइज हिमसेल्फ व्हाट आई हैव डन इज नॉट गुड। तो ऐसे हमारे बाबा के जीवन में तो बहुत ऐसी बातें हैं, बड़े बड़े मिस्टेक करने वालों को बाबा ने कुछ नहीं कहा, ऐसे उन्होंने बातें रखी, वो खुद ही रो के कहने लगे बाबा माफ करो मैंने बहुत गलती कर दी। ये है द नॉन जजमेंटल बट स्टिल जजमेंटल एंड ब्रिंगिंग देम टू राइट पाथ। तो ये बात है। और जितना आप स्वयं को जज करके स्वयं को सुधारते जाएंगे देन गॉड विल ऑलवेज गिव जस्टिस टू यू। और यहां समटाइम्स परसेप्शंस आर द बिग चैलेंज वेयर वी विल बी इन आवर परसेप्शन, अदर पर्सन विल बी इन हिज परसेप्शन, बोथ आर राइट बट बोथ विल बी क्वारलिंग। बट हियर टू अंडरस्टैंड रियलिटी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, सी हाफ ग्लास इज फुल आर एम्प्टी, इट इज माई अप्रोच वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देर हाथी की चार लेग भी है या आठ लेग भी दिख रहा है, तो आठ लेग कहने वाला भी ठीक है, चार लेग भी ठीक है, उनके अनुसार, उनकी दृष्टिकोण अनुसार। लेकिन राइट क्या है, टू जज दैट आई शुड बी इन द राइट कॉन्शियसनेस, द ट्रू कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, देन ओनली आई कैन डू दिस साइड थ्री, दैट साइड फोर, बोथ आर राइट, बट स्टिल वी शुड बी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड हियर यू कैन सी लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन इन ए रॉन्ग प्लेस, जहां लाइट है वहां कुछ ढूंढो तो मिलेगा, जहां अंधियारा है वहां ढूंढो तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारा जो प्रॉब्लम्स है टुडे, द होल डिसहार्मनी, द होल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड विद इन, एंड ऑल दोज चैलेंजेस कनेक्टेड विद इन, एंड दोज चैलेंजेस इनसाइड व्हेन वी सॉल्व, वी डोंट हैव द प्रॉब्लम्स आउटसाइड, नो चैलेंजेस आउटसाइड एट ऑल। In the history, if you go back 1 minute, I want to see that people used to have challenges even that time, but they were not panicked, they were not in depression, they were not unhealthy, they were not describing, they were not crying, they were not, all those things, they took it so casually and so challengingly, so healthily. Why? Oh, who are in families? कैसे, क्यों बताइए, हमारा ही एंसेस्टर्स है ना, ना ये दूसरे तो नहीं है। एक्सपेक्टेशन वॉज लेस, ओनली वन रीजन। थोड़ा और गहराई से सोचिए, कुछ था उसमें, that was the inside, they were always empowered with life values, social values, the social system, and sambandhon mein niyam aur maryadaon se sampann the, sambandhon mein wo kami ke karan aajkal jo bhi baatein hai, kahan values ki kami hai, kya kahan powers ki kami hai, कहां मर्यादाओं की नॉलेज की कमी है, कहां अप्रोच की कमी है। लेकिन यहां दो फेस देख रहे हैं, एक छोटा दिखता है, एक बड़ा दिख रहा है, कैन यू सी। तो दिस इज इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। जब इनसाइड, व्हेन यू आर टू यूर सेल्फ, टू द ट्रू सेल्फ, व्हेन कॉन्शियसनेस इज वर्किंग विद द रियलिटी, देन एवरीथिंग बिकम्स स्मॉल। पहाड़ राई समान हो जाता है, राइस स्मॉल मस्टर्ड। एंड अब सिर्फ बाहर देखेंगे, बाहर मुखी होकर के, विथ बॉडी कॉन्शियस, विथ ऑल द ईगोज एक्सपेक्टेशंस एंड विथ मेनी थिंग्स, देन दैट बिकम्स वेरी बिग, वो पहाड़ दिखेगा। इसलिए वी हैव टू बी कॉन्शियस, द स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी विद इन, दिस इज लाइक ए मिरर, गिविंग अ मिरर टू सी माई सेल्फ वेरी क्लियरली। When there is a dust in the mirror, I can't see myself. When I really take out the dust, I can see myself. So when I really start my journey, the first step of spirituality is the inner journey towards myself. That what am I? Who am I? I don't tell it because you all heard the two lessons already, that I am the light being within, and I should always, again and again, one request here to face challenges is, every alternate second, you have to try this, you just centralize the consciousness to self, that I am light. You are speaking, you come back to a point, then think, then see and speak. Again and again, centralizing the consciousness, the big benefit is, one thing, your brain calms down, where, because again and again coming out down the brain, your reception is more,
listening and learning things, accepting things will be clear for you, and your communication skills will be clear, the right wrong will be clear, so that your judgments will be right in right place and in a right time. These things are very, very clearly you can experience. And another most important thing in centralizing my consciousness to the self, coming back to the reality again and again, shifting consciousness to the self, I am point of light. The biggest benefit is each one of us have a subtle aura. Say Karana Sharira or Sukshma Sharira. Kiralian photography, when the soul leaves the body, they are with a subtle body, you know all that. And people with the negativity, people with so many other type of thinking, when they're near, and our aura and their aura, really, it collides. If too much of negativity, then if you are weak, if that time your mind is not centralized, you are influenced by their judgment, by their thoughts, by their emotions. So you have to be cautious in social circle, wherever you are working or wherever you are coming in communication with many people. If doctors are there, you have to be very cautious, because patients come with all the, you know, aura disturbed, with all the negativity, with the pain. So this practice, again and again, the fundamental practice in Raja Yoga meditation, in the spirituality, is coming back to a point, I am a light energy, I am here. Withdraw. Then do your work. So the energy what you gain in the next level of the meditation, the next stage, where you will, 1 second when you become a point of light, you will connect with the Supreme Source, the Supreme Light, who is, you know, the whole source of all positive energy, values and powers. You can just draw a light, and then, you know, when you just vibrate, you are safe, and the other support, you are giving support to the opposite person to come out of their negativity. This is what we need today. Each one supporting each other with positive, pure and powerful energy. Can we do that daily? Can we do that? All of you are committed to do this and support your family, your working place, your people, your, you know, loved ones, to come out of even diseases, to say you. So this is the fundamental practice what we should do, and realize that, you know, each second I should be back inside, then do the work. That brings the more efficiency. Like the King Janaka story here, you all know. But the biggest, why he became Jivan Mukta, the liberated one, उनको जब पूछा गया, ऋषि ने टेस्ट करने आए, वो दीपक दिया, वो ये आप मेरा महल देखो, लेकिन आप वापस आने तक ये बुझना नहीं चाहिए. जब वापस आए तो पूछा, मेरा महल कैसा था? तो उन्होंने बोला, मेरा सारा अटेंशन तो दीपक बुझना नहीं चाहिए, आपने काम दिया था, क्या था हमको कुछ भी याद नहीं. उन्होंने बोला, दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई लिबरेशन, बींग अ किंग, doing everything, maintaining the whole kingdom and the subjects, but still I am liberated, because all of my attention in doing everything, I am to the point of light, and my connection with the Supreme Light, there the care is inside, so I am beyond all the challenges of the world, whether it is from the people or from the nature, whatever. And another habit what you have to make is let go things, whatever, don't take it anything inside. Hamare baba kehte hai, bacche koi bhi baat, kisi ki bhi baat, koi bhi paristhiti chit mein nahi rakho, man mein bhi nahi,
चित्त मीन्स सबकॉन्शियस लेवल,
वहां भी नहीं रखो। सोचना तो है ही नहीं, देखना तो है ही नहीं, और अंदर रखना भी नहीं। लेट गो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। और अभी जो इम्पॉर्टेंट बात है संबंधों में, फर्गी वन फर्गेट, ये तो करेंगे ना हम सब मिल करके। फर्गीव करने के लिए क्या चाहिए? सी गॉड इज सेड टू बी मर्सीफुल एंड देन द फर्गीवर, इज इट? ऐसा है? गॉड, ओ गॉड शो मर्सी ऑन मी। क्यों? हमने जो भी किया, प्लीज शो मर्सी एंड एक्सक्यूज। नहीं तो अंदर हरेक के प्रति, हरेक की कमियों के प्रति हमें क्या करना है? दया दिखानी है। आई शुड हैव मोर दया, आई कैन से कंपैशन, कंसर्न, द करुणा, यू नो, दया फॉर देर। कोई गिरता है, आप पत्थर मारेंगे, हाथ देंगे, क्या करेंगे? हाथ देंगे। तो वीकनेस ऐसी है, अंदर आत्मा की गिरावट है, उसमें आई शुड सपोर्ट विद द पावरफुल वाइब्रेशंस ऑफ द वैल्यू, द मर्सी एंड एक्सक्यूज दैट, ट्राई टू सपोर्ट विद अ पावरफुल वैल्यू, ट्राई टू रिप्लेस दैट वीकनेस विद अ पावरफुल वैल्यू, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड डूइंग टू बीइंग इज वी आर, आई ऑलरेडी फर्स्ट आई टोल्ड दैट वी आर नॉट जस्ट human doings, but we are light beings within. I should have the consciousness of that. And the gadgets nowadays, you know, the right thing, wrong thing, what they have shown here. People in the same place sitting next to them, they will message, you come to dinner. They doesn't, because they are busy in gadgets, or if they are upstairs, they'll say, please come to lunch or dinner. They can't, that concern, that love, that caring, that sharing. पहले जो था सिस्टम में वो प्यार खत्म हो गया, क्योंकि सारी प्यार कहाँ चला गया? गैजेट से चली गई। तो इसीलिए ह्यूमन रिलेशनशिप में सारा क्या हो गया, बाधा आ गया, फैमिली ब्रेकअप आर मोर, एंड यू नो दैट लव इज गॉन। दीज थिंग्स रियली आई शुड बी वेरी केयरफुल। So I should use the things, but love the people. Just not because handling the missions, you don't make your heart a mission. You are not a mission. You are Chaitanya Shakti. You are powerful. So knowing by doing, that you all know that there was a story, time is over. And by Rajyoga meditation, we get the eight powers, what we really need. Every second I say, you know, the small creature, one big quality you have to adapt, the power you have to adapt is to power to withdraw again and again to centralize the consciousness. That is like a tortoise, what they have shown. And power to face situations, power to judge, power to discern, and power to accommodate like a ocean, woman, be non-judgmental. You have to just go on, give. That's what Baba did. Baba kisi ki kamiyan nahi dekha, kuch bhi nahi dekha. Koi ne aake kiya, Baba maine itna aparad kiya. Gyan ke pehle Baba ne kaha, bachche bhul jao, tum mere ho bhi. You know, see, so lovingly embraced. That is how, you know, accommodating people means like you are just giving the excuse to make them to come up in life. And another power to pack up. When the call comes, we know we have to be ready. And the final truth of life is dread death. And we are alone in this journey of life. When we leave, nobody will ask you, how are you? This truth should be realized very deeply to come out with all the powers of the spirituality. Here again, when we are inside, when we grow inside spiritually, we are calm, we are, you know, masters,
self masters, handling the things as a kings. Otherwise, we are like, you know, she is like screaming with situation, with challenges. That should not be our life. We should handle the life with such a royalty, with all the values, with all the powers. Because you are all kings, born kings of God. Because a soul, har ek baap kehta hai, mera bachcha raja beta hai. Is it right? So we are all kings, na? Very right. Do you agree? Then why slavery of mind or the emotion or the senses? Let us rule and let us rule the life as the kings and come out and be always bondage free. Saying so, thank you so much. Om Shanti. Hope no questions. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबिका दीदी. यू हैव शेयर्ड सो मेनी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल इनसाइट्स. देर आर सो मेनी, आई एम नॉट गोइंग टू कोट अगेन, बट द प्रैक्टिस, द क्लैरिटी एंड द एनेक्डोट्स फ्रॉम हर ओन लाइफ, द स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स वी हैव इन आवर सीनियर दादीज ब्रह्मा बाबा, सो ऑल दिस helps us to accept these spiritual principles and, you know, apply them individually in our situations. So I hope some of these will be takeaway for people who are facing some of these situations, or maybe they can help others whom they meet and see that such understanding can help them. Now I invite Dr. Lalit Kumar Gupta. He is retired as Director MT RDC from DRDO, outstanding scientist. He is the recipient of many fellowships and awards, J.C. Bose Memorial Award and Best Project Award. And he is also a member of Indian Physics Association, Indian Vacuum Society and Magnetics Society of India. So, Brother Lalit Kumar Gupta, I request you to share your views on this subject.
Good afternoon. Om Shanti. Adarniye Dr. Selva Murthy ji, Rajyogini B.K. Ambika ji, Sister Rama, Sister Bharti, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस एंड डियर फ्रेंड्स, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि मैं यहां पर इस स्पार्क के आयोजन में उपस्थित हूं. इसमें आने की इच्छा मेरी कई साल से थी और मेरे डीआरडीओ के कलीग डॉक्टर मिस्टर दिनेश अग्रवाल जी मुझे प्रेरित करते रहे हैं यहां आने के लिए. ओआरसी दिल्ली में मेरा संपर्क रहा है ब्रह्म कुमारी आश्रम से, और मैंने जो कुछ भी यहां देखा वो मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मैं उसको अपने विज्ञान की जो सोच है उसके साथ में रिलेट करने की सदा कोशिश करता हूं. और अब ये जो को क्रिएटिंग हार्मनी थ्रू रिसर्च एंड स्पिरिचुअलिटी का जो टॉपिक है, ये बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इस समय विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है और स्पिरिचुअलिटी में जो बहुत प्रगति हो चुकी थी वो काफी कुछ हद तक कहीं बिखर गई है या छुप गई है या भुला दी गई है. तो इसलिए इस समय पर इन दोनों को जोड़ना बहुत आवश्यक है. एज ए साइंटिस्ट मैं जब देखता हूं कि ह्यूमन काइंड ने पिछले करीब 2 लाख सालों में रफली कितनी प्रगति की है, इनॉर्मस, ट्रेमेंडस. अगर हम अपने पॉपुलेशन को देखें तो पिछले 2 लाख साल में सिर्फ 1 बिलियन लोग थे, लेकिन पिछले 200 साल में यह जनसंख्या बढ़कर 7.7 बिलियन हो गई। और ये हम सभी जानते हैं कि उस 7.7 बिलियन का करीब 17-18% जो जनसंख्या है वो भारत में रहती है। तो जो कुछ भारत में होगा और जो कुछ भारत करेगा उसका पूरे विश्व पर बहुत असर पड़ने वाला है। अगर हम ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री देखें तो हमेशा स्ट्रगल रहा है। बीच बीच में कुछ गोल्डन एरा भी आए जबकि सुख शांति और सौहार्द का वातावरण रहा, लेकिन अक्सर स्ट्रगल किसी न किसी तरह का रहा है। और जैसा कि राजयोगिनी जी ने कहा, उस स्ट्रगल के पीछे एक डिजायर, एक्सपेक्टेशन, ग्रीड और इस तरह के सब कारण रहे हैं। आज की जो सोसाइटी है वो बहुत सारे चैलेंजेस को झेल रही है। राजयोगिनी जी ने काफी कुछ चैलेंजेस बताए जो कि आप घरों में और ऑफिस में और रोज की लाइफ में देखते हैं, लेकिन अगर नेशनल या ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो फूड पॉवर्टी एंड वाटर। और वो चैलेंजेस क्यों हैं? इसलिए नहीं कि हमारे पास ये सब चीजें कमी हैं, बल्कि इसका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरे जगह पर हम देखते हैं कि वार्स हो रही हैं, छोटी छोटी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और टेररिज्म हो रहा है। उस सब के पीछे भी कारण इसी तरह के हैं कि जो ह्यूमन वैल्यूज का लॉस हो चुका है और लोग ग्रीडी या अपने आप को एक्सर्ट करना चाह रहे हैं उस कारण से। एक और बहुत बड़ा, हम लोग सभी जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें वो कहना इसलिए चाहता हूं कि हम कॉन्टेक्स्ट को सही रखें। करप्शन एक बहुत बड़ा मीनस है आज की तारीख में और ग्लोबली लेवल पे है। ये हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे है। कहीं छोटे स्तर पर है, कहीं बड़े स्तर पर है। और ये सिर्फ इसका कारण है कि मॉरल वैल्यूज का ह्रास हो चुका है और लोग ग्रीड में फंसे हुए हैं। एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है और इलिटरेसी इस दुनिया में अभी भी काफी हद तक है। और जो हम लोगों ने क्रिएट किया है इतने सालों में वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। तो अगर देखा जाए कि आज दुनिया की जो सारी समस्याएं हैं उन सब के पीछे कौन है? हम हैं, मानव जाति है। पशु जाति का तो ह्रास हो चुका है, ये मानव जाति है जो कि इतनी इंटेलिजेंट, प्रोग्रेसिव और कैपेबल है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को और अपने वर्ल्ड को संभाल नहीं पा रही है। तो ऐसे उसमें क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन हर इंसान के पास है और जैसा कि हम यहां दो दिन से सुन रहे हैं, ये सॉल्यूशन हमारे अंदर है। हमारी अपनी स्पिरिचुअलिटी और हमारे अंदर की जो ताकत है उसमें है। इसके ताकत के मैं कुछ अपने अनुभवों को आपको शेयर करूंगा जो कि विज्ञान से आते हैं। इसको हम कह देते हैं कि स्पिरिचुअल है, किसी ने देखा नहीं है, हम लोग मान भी लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर कण में एटॉमिक पावर है। हर एक कण ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड और हर एक कण एक एटम है और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बराबर गति से घूम रहे हैं और वो एक अपने आप में एक सिस्टम है, बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह। और उस एटम को अगर हम तोड़ देते हैं या बहुत छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम को हम जोड़ लेते हैं तो उससे बहुत ट्रेमेंडस पावर, न्यूक्लियर पावर या फ्यूजन फिशन के द्वारा निकलती है। उस पावर को इतनी निकलती है कि हमारा जितना दुनिया भर का अभी तक कोयला हमने जला के राख किया है अपनी एनर्जी के लिए, वो कुछ एक किलोग्राम से उतनी पावर हमको इलेक्ट्रिक पावर मिल सकती है। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि एनर्जी अंदर से कैसे असर करती है। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो माइक्रोवेव ओवन यूज करते होंगे अपने घर में, जरा हाथ उठाइए कितने लोग हैं। काफी लोग हैं। मैं माइक्रोवेव का एक्सपर्ट हूं और माइक्रोवेव ओवन के जो अंदर डिवाइस जो माइक्रोवेव जनरेट करती है मैग्नेट्रॉन, उस तरह की डिवाइसेस हम रडार के लिए बनाते हैं। रडार में भी उसी तरह की डिवाइस लगती है परिष्कृत रूप में और मैग्नेट्रॉन में भी। तो उसमें जो माइक्रोवेव में आपका खाना गर्म या पकाया जाता है और जो आग पर पकाया जाता है उसमें से दो फर्क है। दोनों खाने को पकाते हैं। आग में जब आप पकाते हैं तो आप बाहर से अंदर की तरफ गर्मी को या हीट को ले जा रहे हैं और माइक्रोवेव में हीटिंग जो है वो अंदर से बाहर होती है। जब माइक्रोवेव को हम रेडिएट करते हैं फूड को तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, हर वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट जो है पूरे खाने को गर्म करती है, बर्तन ठंडा रहता है। तो राजयोग में अगर स्पिरिचुअलिटी में आप रहेंगे, बिल्कुल ऐसी स्थिति है, आप बाहर से ठंडे रहेंगे, अंदर आपके बहुत कुछ क्रियाएं चल रही होंगी और आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर सुनते हैं कि अगर स्पिरिचुअल होना है तो आपको प्योर भी होना है, प्योरिटी भी आपकी अचीव करनी है, प्योरिटी जो आत्मा के गुण हैं वो एक्वायर करने हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम माइक्रोवेव ट्यूब्स बनाते हैं तो हमारी ट्यूब बन जाती है, माइक्रोवेव डिवाइस बन जाती है, बहुत सारे मटेरियल्स को, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स प्रोसेसेस को यूज करके हम एक डिवाइस को बना लेते हैं, लेकिन वो डिवाइस काम तब तक नहीं करती जब तक कि उसमें जैसे शरीर में प्राण फूका जाता है इस तरह से प्राण न फूका जाए। और उसकी विधि क्या है कि उसके अंदर की जितनी भी हवा है वो सब निकाल दी जाए। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर 1000 मिलीमीटर है तो 10^-10 मिलीमीटर प्रेशर हम उसके अंदर जनरेट करते हैं, और जब वो जनरेट हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह से हम उसमें माइक्रोवेव पैदा कर पाते हैं या एम्पलीफाई कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिमिलरिटी हैं कि कुछ शरीर में तभी हो सकता है जबकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी जो स्पिरिचुअल पावर की एग्जाम्पल है वो मैंने कल हरिश्चंद्र भाई भी जंगल की बातें बता रहे थे, मुझे भी कुछ याद आया। कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज होते हैं, सिकोया के नाम से भी जाने जाते हैं, और वो एक ऐसा पेड़ है जो कि 1800 वर्ष जिसकी जिंदगी होती है, 1800 वर्ष तक जीता है, और वो पेड़ का डायमीटर करीब 30 मीटर तक हो जाता है और ऊंचाई 300-400 फीट तक हो जाती है। इतना बड़ा पेड़ होता है और कैलिफोर्निया में गर्मी होने से अक्सर जंगल में आग लगती रहती है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि हम एक ऐसे पेड़ के अंदर गए जिसका डायमीटर जो है करीब 20 फीट था, उसमें कम से कम 50 लोग उसके अंदर खड़े हो सकते थे। उस पेड़ के वो पूरा पेड़ अंदर से जला हुआ और खोखला था, चिमनी की तरह बना हुआ था कि आप 20 लोग खड़े हो जाएं उस पेड़ के अंदर और आसमान को देख पाए, लेकिन बाहर से पेड़ जीवित, हरा भरा और उसकी पत्तियां सलामत। तो यह उस पेड़ ने कितनी ही इतना अपने जीवन में फॉरेस्ट फायर्स झेली हैं, लेकिन उसकी जो इनर स्पिरिचुअल और पावर थी उसने उसको अभी जिंदा रखा है। तो यही एक एग्जाम्पल मैं आपको आखिर में देना चाहता हूं कि अगर हमारे साथ चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, अंदर से आएंगी, बाहर से आएंगी, जो हमको परेशानी नहीं देना चाहिए, हमारे बच्चे या कोई हमारे संबंधी या फ्रेंड वो भी देंगे, लेकिन उसमें भी अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को या इनर स्ट्रेंथ को अपने कायम रखेंगे और जीवित रखेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक इस देश की सेवा और अपने शरीर की और अपने समाज की सेवा करते रहेंगे। अब मैं अंत में धन्यवाद देना चाहता हूं इस पार्क को, सिस्टर अंबिका और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इन्होंने मुझे इस अवसर पर मौका दिया बहुत कुछ सीखने का और आप लोगों से संपर्क करने का। और मैं चाहता हूं कि यहां से हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं उसका अगर एकमात्र अंश 0.1% भी साथ ले जाकर के प्रैक्टिस कर सकें तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक हम लोग का अचीवमेंट होगा। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ललित कुमार गुप्ता जी, आपने इस सब्जेक्ट को बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस के साथ साइंस के और नेचर के एग्जांपल्स देके हमारे सामने रखा। सो वंस मोर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। नाउ एज वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन, बिफोर दैट वी हैव द फॉर्च्यून ऑफ having Dr. Selvamurthy in this session, and we have heard him yesterday. Today also I request brother to come and sum up this session and present his views on this subject. As you know, he has been a distinguished scientist and former CC R&D DRDO and he has been he's saying you know him well, so I won't stand between him and you more, Brother Selvamurthy.
Om Shanti. It is indeed a homecoming, and many of you, I know you, and many of you know me as well. We are all brothers and sisters who have come to this union in this hall to bring a transformation. Transformation in us, transformation in our families, transformation in the society, transformation in the nation, and create a new world order. So that is why this conference is going to be different. You know, many times we come claps, we listen to Dadiji, we listen to scientists, and as soon as we leave and get back to our home, to our workplace, we get back into the Maya. But then in this meeting, we are going to transform ourselves. So let us take a resolution that, as Lalit mentioned, even if we can practice 10% of what we have learned, let us ruminate, let us analyze, synthesize, assimilate, and practice. So this is the transformation I expect. Let us celebrate this decision with a decision all of us have taken today. We are going to be the crusaders. We are going to be the transformers who are going to not only transform us, but then we are going to transform the humanity. If one Gandhiji could create a movement for a freedom, why can't we all together, so many souls with so much of power and so many centers, more than 8,000 centers of Brahma Kumaris in 130 nations, if all of us take that resolution, can we create a new world order? We can create a new world order. Yes. That is what is the purpose of this conference. So let us not again clap and forget about it. Our role, responsibilities have increased. Because all of us in an eternal journey, we are not just here as Rajyogini Ambikaji mentioned beautifully, the problems that we encounter, the challenges we face, and the possible solutions. But then that is the way, the path she has shown. But how effectively we walk in that, how happily we walk in that path, is the one will give the transformation. So that is why I would request all of you, first you transform yourself. You charge your batteries. Because soul, as I said, we are on an eternal journey. We might have gone through several janmas before we come to this. We have brought our karmic account, the bank account, you know, what we have done in those sanskars, the values which we had, the karmas which we did. So we have come with that. That's why nobody can compare each other. Don't compare. He got the promotion, I didn't get the promotion. He was successful, I am not successful. He is happy, I am not happy. No comparison. Because each one of us, each one of you, is unique yourself. Realize that. So you cannot expect your wife the way you want her to be, or your children to be like what you want them to be. Because they have come with their own sanskars, values, karmic account. Same thing with your employees. So realize that every one of us is in our own journey of soul, atma, atma rasta, you know, atma journey. So that journey has to be made perfect every time we improve. We raise our divinity and reduce our non-divinity. That is the purpose of creation as a human being. There is a song which Dr. Kalam, Abdul Kalam, and myself sang in this Brahmakumari Samaj about 20 years ago when we had come together. So the meaning of that song I will tell you before I sing. The meaning is, it is very rare to be born as a human being. If you look at the whole biosphere, you have the trees, you have the small algal, you have the microbes, you have reptiles, you have amphibians, you know, so many. But we are created as 7.7 billion human beings. How much happiness, bliss. We are not created like an earthworm. We are not that they are very bad. But then, we are created with the six senses intact, intellect. So, we are created as a human being. We are blessed. It's very rare. And you are blessed. We are happy. Then, out of the 7 billion people, how many deformities? Mentally challenged, physically challenged, visually impaired, hearing impaired. But we are all blessed with all intact, everything intact. How much happiness? Happiness? Let's celebrate this happiness. So we don't realize that. We never think of what all we have been blessed with, but what we have not got. We are all the time bogged down with melancholy. You are melancholic, moronic, stressed. Why? You are blessed with so many things because we are comparing. Oh, he has got two cars, I have only one car. He has got bigger house, I have a smaller house. But then he has come with that karmic account. So, you should have the second thing is, you should be happy that you are blessed with all the faculties intact. How many of them could go to schools out of 7 billion people? There are so many illiterate. We are blessed. We went to schools. We went to maybe colleges, some of you. Some of you university. Some of you are doctorates. How much happiness? See, we were all educated. How much happiness? We have a big role to play. And then, having done this, we have the opportunity to do tapas and also to improve your divinity. So we have that power. Human beings only have that power. So, how much we should do? You should give charity and you should give tapas. Improve yourself. Look inwards. Raise your spirituality for which we have been created. This is an opportunity for us to raise ourselves. And in our eternal atmic journey, this is the highest opportunity God has given you. So let us realize it. And then, once everyone realizes, Satyug is not very far. Everybody says, Kaliyug, this is happening, that's happening, everything negative. But then who has created? Own the responsibility to yourself. Maybe in your previous janma, you created this. Or in this present janma, we are exploiting the nature. We are exploiting the people. We are greedy. So, first thing, if you have to correct a problem, own the responsibility to yourself. If something is happening, challenge is happening, failure is happening, problem is happening to you, nobody, that person is not responsible, this situation is not responsible, you are responsible. The first thing to correct, the solution lies in you. First, own the responsibility to whatever happens to you. Yes, you are responsible. But we always find, my boss has not treated me, my wife scolded me, my child did not listen to me. You put every problem outside, but the actual problem is you. Once you own that responsibility, then correction becomes easier. So the first step is to own anything happening to you, you are responsible. Then we must always think that, you know, like, always look positive. When you had breakfast, you know, you also had a laddu, you know, sweet. You also had another one, you know, spice, sambar, and also masala, aluki, alu butter, which is spicy. So life is also like that. Enjoy. When you are enjoying laddu, you also enjoy that. This, you look at that equanimity. It's an experience. Sweet is an experience. Karam is an experience. Spice is an experience. That is life. You will also have success. you will also have not so much success. But then you create the mind that is in you, that is in you, to look at that equanimity, to perceive it equally as a this is also a stimulus, this is also a stimulus. That is a taste, and this is another taste. So then you don't perceive it. If you don't perceive that as a problem, as a failure, it's no more. It's a problem. Where is the problem? Only when you see that it's a problem, it's a change, it's a failure. You will not fail. If Chandrayaan 2 is not a failure, it's a great success. The Chandrayaan 2 is a great success for a country like us with 900 crores. If we are able to land 384,000 kilometer altitude, if you are able to reach propulsion, control, guidance, navigation, payload integration, separation, modeling, simulation, what kind of complicated our scientists have done. So this is how you look. You can look at it as a failure. You can look at it as a great success we have learned for a country like us too. This is how why I am narrating this, it is in your perception. How do you perceive that? How do you perceive that incidents are happening in your life as a success or a failure? This is what is in your... So change your perception. Create that positive attitude. Look at everything positive. Even in a failure, there's a silver lining that you learn something, that's a great success. In life, learning is a great success. Now, coming to our self-existence, we exist at three levels. The physical, mental, and spiritual. We are focusing on two aspects well. Not very well, well. First is physical. So I eat breakfast, lunch, we are waiting for lunch. And then we take care of our body, and then we take exercise, walking, and some of us, we don't take care of it properly also. We abuse it. We put all kinds of food, we eat at all kinds of time, and then even if we are not hungry, we feed ourselves. So the first is physical level of existence. That should be taken care of to avoid the problems. I'm telling now, why problems? What solutions? So we exist at physical level, so you have problems related to physical. Then you have mental existence, that is at intellectual plane we exist. We analyze, we criticize, we critically look at things. So we exist at the intellectual plane, that is the other level. Third level is we exist at spiritual plane. So the problems could be related, if you put any problem, it will be related what we perceive as problem. Again, perceive as a problem could be related to anyone. Health. Why ill health today? Why so many hospitals? Patients are increasing. Doctors are not able to cope up. Why? The soul, which is residing in this beautiful body, is not being taken care of. The house is not being taken care of. Your physical existence, we are not taking care of this. The first thing is, how do you nourish this physical with proper food, proper sattvic diet, and the diet which is conducive to the human existence? So first is the diet, Anna. Then you have to also have exercise. Our body was physically evolved to be tough. We were living in jungles, mountains, caves, vagaries, facing all vagaries of climates, and also running away from the predatory animals, hunting for the food. Our body was evolved. Now with no use, it undergoes disuse atrophy. We don't exercise, we don't walk, we don't run, we always use lift, we always use cars and other vehicles. So the first problem is related, health problem is related to your body. The house you are not keeping, your house you are not keeping clean. It's not only keeping clean and physically, even mental electro pollution, thought pollution, all this is your first thing. If you have to find solution, keep your physical existence properly. Take care of it. Second is mental. We put all data inside, information inside, maybe knowledge inside. So you are developing, you are increasing your, you know, synaptic connections, plasticity, neural plasticity. So we are increasing all this memory. So now we are not using memory, even arithmetics, numericals, which we used to do in schools. Today everything is in calculators and laptops and mobiles. So we are now losing that also, the problems related to mental. You think you are the supreme intellectually. So the mental, the other intellectual plane of existence, how do you feed the right knowledge? It need not be only thermodynamics and also the law of management, but you need to put the right knowledge inside. What you put, what it comes out. So intellectually also, many problems related to mental health. Why? Because you are not giving the right input. You are not seeing the right thing. You are not hearing the right thing. And you are not feeling the right things. So the intellectual input which goes into your brain and mind is all polluted. You are not feeding the right nourishing, the right kind of feeding into, like body being sattvic diet and others, you need to also give the right kind of the intellectual input to your brain and mind. Third is spiritual. We forgot about this. We forgot about the existence. Third level, most important level of existence is spiritual existence. What are you nurturing? What are you feeding to your spirit, your spiritual existence? Hardly anything. We never think of a supreme being. We never think of giving something to a person who is in need. That is spirituality. Spirituality is not just doing a puja or just going to a temple or a mosque or a gurudwara. That is one form of reflection. But spirituality is much beyond. So first thing is, how do you nourish? That is why the problem. Today whatever you see, you are working at intellectual plane, not at spiritual plane, because that is intellectual giant and a spiritual pygmy. You have developed all this intellectual capability maybe, but then you have not developed your spiritual capabilities. So that is why the alienation, terrorism, all that. No, intellectually they are able to go and bombard a place stealthily. But they are there, that intellect. But they didn't know what impact it will have on the people, what pain they are creating. Spiritual. So intellectual giant and spiritual pygmy. Problem. This is what is the problem. There is an imbalance in our development. We are not taking care of our physical existence properly, health problems. We are not taking care of the mental things, feeding the right inputs. So mental health disorders. And also we are having spiritual existence. We have forgotten. That's why Dadiji, Ambikaji, Rajyoginiji reminded us, we are spiritual beings who have come to this world for human experience, with a human body, house, and then with intellectual capability. Realize that, then you need to nurture more your spiritual existence rather than anything else. Automatically other things will get corrected. So in this meeting, we should remember the main concept of Raja Yoga is, you are soul conscious. If you are, think that you are soul, all of us are souls, then there is no problem, no comparison. Somebody, the soul rests in a beautiful house, another house not so beautiful, another house is another way it is beautiful. So everybody is beautiful. Life is beautiful. Life is color, music, love, beauty, all good things. So that thinking will come. So realize, then all your ego will go down. There is no different soul. All of us are soul. There is a question of I am bigger, I am lower. So the soul consciousness. Today you make a resolution that you will not think that I am Selvamurti, I am so and so, Lalit. And so I am a soul living in this house which is known as Selvamurti. And tomorrow I will move to another house. It could be Lalit or somebody else. So if you realize that, then your whole problem is solved. So that is the essence of Raja Yoga, soul consciousness. You realize that you are soul and nurture that soul. Then we can create a world, a new world order. So first is, transformation should happen in you and then in the family. How can we do that? Education. If Because there are many people who from government, administrators and people who are in positions in your institution. Education. Education is just not only what you do in textbooks, classrooms. It's a formal education to get a degree. But then education is, there are non-formal education, there is informal education, and there is spiritual education. So these are very important for when you say education. Through education, we can bring this transformation. When you are teaching, we used to have moral classes, ethical classes. How many of these schools now have this? We used to have happiness classes. We used to laugh. We used to have jokes, storytelling. It's not there. So one transformation, if you have to bring at the global level, we should say we need a change in education. We are giving all the textbook knowledges, Western knowledges, but where is the Indian wisdom, the Vedic culture? It should come. Yoga, Ayurveda, Siddha, Yunani, Vedic, essence of the Vedas, that should all come in our education. And TVs should project the essence of them. See the informal education, because we see every day, children see. In the social media, internet, digital platform, we should bring such things which children will see. Then we can create that new world order. So one is transformation, solution. If you have to find, it is through education. We should educate our people. Enlighten, not educate. Enlighten ourselves. Then only, once that enlightenment happens, all the solutions are there for your problems. The Gita says, you know Gita, Bhagavad Gita, in that, you know, Arjuna is now bogged down. He is worried about the body consciousness. He has gone into that level and says that I cannot kill my brothers, sisters, and also the other, all relatives, kith and kin, they are standing, why should I kill? You know, he got into body consciousness. And then Arjuna says to waken him, you know, he is motivating, a great motivator, Arjuna, Lord Krishna. Lord Krishna says, Hathova Priyapasi Swargam Jithova Bokshase Mahim. Well, it means, O Arjuna, you are a warrior. We are human being. You are warrior. Your karma is to fight. Fight with happiness. The journey of fighting itself has to be happy in a dharmic way. And then, ultimately, if you win, you enjoy the kingdom here. But having fought the war happily in the dharmic way, then if you still lose and get killed, don't worry, be happy. There is another kingdom waiting for you to receive you, welcome you. So fight. Now to translate that to all human beings, we are in a journey of soul, atmic journey. In that we will have challenges, opportunities, happiness, and the other type of experiences. It will all come, but then keep moving ahead. Let the soul get happily moving. The journey has to be happy. Not that only when I reach the target I will be happy. Make the journey happy. At every step, live happily with purpose. So that is very, very important. I'll tell a pencil story. When you open the internet, emails, sometimes you get spam mails. You know, many spam mails come. But I saw one pencil story. So suddenly, what is that pencil story? I wanted to read that pencil story. So the story goes like this. This is the pencil. It's a pen, but imagine that it's a pencil. So I have created the pencil. I am the designer, developer, and creator of this pencil. So I am talking to the pencil. Oh, beautiful pencil. I have created you so sleek and beautiful because people will come and then easy to hold and then make use of you. That's why I have given a beautiful structure. I have given a lead, you know, lead in the pencils. Rubber used to be there. I have given a rubber eraser on the top of it. Whenever you make mistake, just erase it and don't make the mistake again. So I have given a eraser to rub off the mistakes which you commit. I have given a lead in you. Pencil writes with the lead, no? I have given a lead. This lead will drive you to function properly, to write That will drive you. And, oh pencil, people will come. They will use knives. They will use sharpener to sharpen you. Don't get worried. In the process, you get sharpened. You will write beautifully. Otherwise, no, it will be very, very erratic. It will be broad and it will be sharp. You will make a sharp writing. You will perform well. So don't worry about, get worried if when pencil, oh pencil, when they come and sharpen you with knife and also with sharpener. Now you assume that God is talking to you. God, you know, you are all pencils. We are all pencils and God is talking to us. Oh beautiful human being, I have created you two leg, beautiful structure with hand, face, beautiful. Why? Because other people will come and seek your help, hold you, love you. That's why I have created you such a beautiful structure I have given you. I have given like an eraser in a pencil on the top of the pencil. I have given you the ability to correct yourself. You will make mistakes. You will make, like pencil makes mistakes. You will make mistakes, but correct it. I have given the eraser to erase it, forget it. Forget it, forgive it. You know, she said. Then, I have given like a lead in a pencil, I have given you a conscience. You know, conscience will always lead you in the right path. Like the lead in a pencil lead you to write beautifully. Conscience will drive. Listen to conscience, whatever we have. The inner conscience. Then, people will come, they will give problems, challenges. Life is full of also challenges, trials, tribulations, failures. But don't get worried. You get sharpened in the process. Like a pencil getting sharpened with knife and sharpener. When challenges come, it immunizes you. It evolves your soul. More than when you are happy, when you are problematic, you think of God. You think about your soul awakening, spiritual awakening, all that comes. So these are opportunities to bring you closer to God. So take it that way, like trials and tribulations in life will make you a better human being. And don't get worried. These are opportunities. Now finally to conclude, and the final message is, one important thing is love and compassion. Develop in yourself. Love everybody. Love everything. The tree, the animals, the biosphere, the chairs, everything is helping us. Be grateful. Love them. Love each and everyone. Create unconditional love. Unconditional love. Compassion. Because you should have tolerance and compassion. That's very, very important. And finally, I will end with that song which Dr. Abdul Kalam and myself sang in Brahma Kumaris 20 years ago. It's a Tamil song, but I told the meaning that the gates of heaven will open if you have led a good life. Aridu aridu manidara adalaridu adaninum aridu koon kurudu sevidu pedu neengi pirathil koon kurudu sevidu pedu neengi pirandhalum jnanamum kalviyum நயத்தலரிது ஞானமும் கல்வியும் நயத்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செய்தலரிது தானமும் தவமும் தான் செய்த காலையில் வானகம் திறந்து வழிவிடுமே. Thank you very much. Om Shanti.
Thank you very much, Dr. Selvamurthy, for sharing beautiful inspirations and for that beautiful song. I was the lucky one to be there when he sang it with Dr. Kalam. So I am grateful to be witnessing it again. And the essence is, I remember the feeling we carried. It was a group of young sisters with whom he was sharing some inspiration, and this song came up. So the essence is,
what he was sharing, that this whole culture of respect and gratitude, if we cultivate it, then I think we won't be having so many problems that we are facing today. So to conclude the session, I now request sisters to present mementos to our guests. And before we conclude today's session, जिसमें हमने बहुत सारी insights सुनी कि challenges को कैसे face करना है, लेकिन एक insight ये भी है कि हर समस्या का समाधान soul में है. Every soul knows what it has to do to heal itself, but the main challenge is to silence the mind, because it's only in that silence we can access that wisdom that helps us to live with co-creation, co-existence, harmony. तो उस जर्नी को अभी हम लास्ट में एक्सपीरियंस करेंगे. मैं आमंत्रित करती हूँ भारती बहन को, जो कल्याण से हैं, पिछले 18 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं. तो भारती बहन, हमें उस सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति, जिसको हम साइलेंस कहते हैं, स्पिरिचुअल साइलेंस, सोल कॉन्शियसनेस, उसका अनुभव कराएंगी.
ओम शांति. हम सकारात्मक चिंतन के द्वारा एक बहुत सुंदर अनुभूति करने जा रहे हैं. हम सभी आत्माएं बहुत सौभाग्यशाली हैं जिस पावन भूमि पर पहुंचे हैं. तो आइए अपनी स्वस्थिति और परमात्मा से गुणों और शक्तियों को अनुभव करने के लिए हम स्वस्थिति में स्थित होते हैं. स्वचिंतन करते हुए स्व की स्थिति में स्थित होते हैं. हम अपने आप को मस्तक पर एकाग्र करते हुए अपने स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं. मैं बहुत सुंदर, दिव्य, चमकता हुआ सितारा हूँ, शाइनिंग स्टार हूँ. अजर, अमर, अविनाशी, सत्वगुणी हूँ, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, शक्ति, शुद्धता, मेरे अपने गुण हैं. यही मेरा मूल स्वभाव है. इन गुणों के सागर स्वयं परम पिता परमात्मा है. मैं अपने बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा परमात्मा के उस स्वरूप को सम्मुख देख रही हूं. परमात्मा भी एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा है, ब्राइट स्टार है. अपने गुणों एवं शक्तियों को परमात्मा सूर्य समान हम सब पर बिखेर रहे हैं। ये परमात्मा के किरणों से मैं अपने अंदर समा रही हूं। इन परमात्मा किरणों में बहुत गहरी शांति, निस्वार्थ प्यार समाया है। इसी गहरी शांति में अलौकिक सुख भी समाया है, शक्ति भी समाई है। यही परमात्मा से प्राप्त शक्ति मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में, निर्विघ्न बनने में हिम्मत दे रही है। मेरे अंदर बल भर रही है। यही परमात्मा चित्र छाया मुझे एक सुरक्षा का अनुभव करा रही है। इसी छत्र छाया में मुझे जीवन की हर परिस्थिति छोटी प्रतीत हो रही है। अब मुझे जीवन में आने वाले हर तूफान तोहफे जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसी परमात्मा शक्तियों को अपने अंदर समाकर मैं चिंता मुक्त और भय मुक्त अनुभव कर रही हूं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा से प्राप्त इन शक्तियों द्वारा मैं अनेक आत्माओं के हर परिस्थिति में भी अपने शुभ संकल्पों द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सर्व को हिम्मत और धैर्य देती रहूंगी। परमात्मा की इन शक्तियों और गुणों द्वारा मैं अपने जीवन को सकारात्मक, शक्तिशाली बनाती जा रही हूं। यही परमात्मा शक्ति मुझे विजयी होने का अनुभव करा रही है। इस विजय का अनुभव करते हुए हर पल मैं परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।
थैंक यू भारती बहन इस सुंदर अनुभव के लिए। अब हम सब अपने आदरणीय मंशा सिंह वक्ताओं का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबके लिए जो इतने समय से बहुत प्यार से इन्हें सुन रहे हैं और इस सेशन को आपने सक्सेसफुल बनाया, तो आप सब अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए।